समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नई सुबह नई आशा के साथ आज करेंगे नए दिन की शुरुआत। सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आपका स्वागत है कार्यक्रम आज सवेरे में। आज रविवार है और आज का दिन खास इसीलिए होता है क्योंकि इस दिन हम परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और आपके इस पल को और खास बनाने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ पूरे आधे घंटे, जहां होंगे देश और दुनिया के समाचार और प्यार भरे नगमे। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
नमस्कार Farhat, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. Or jaise ki Farhat ne bola hai ki ye bahut hi pyari subah hai and it's a beautiful Sunday morning, and we are asking all our listeners and all those lazy listeners who are still in bed to please tune on your radios and listen to us getting you this our daily news magazine program aaj savere, jisme ki Farhat ke ne jaise bola hai, we will be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 20th of April. But before all this, let's begin with the headlines, Farhat.
जी रेनू, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि कल जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर जद्दा जाएंगे। ये पिछले चार दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जद्दा की पहली यात्रा होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते भी बहुत अच्छे हुए हैं रेनू, और आर्थिक की बात हो या रक्षा क्षेत्र की या सांस्कृतिक सहयोग की, इसमें भी काफी मजबूती देखी गई है।
एग्जैक्टली। So, Bharatiya Janata Party has completely rejected and distanced itself from controversial remarks made by the party MPs Nishikant Dubey and Dinesh Sharma on the Supreme Court and the Chief Justice of India. The two MPs have also been asked to refrain from making such remarks. In a social media post, BJP President JP Nadda said that the Bharatiya Janata Party has nothing to do with the statements made by them. He said these are their personal attempts, but the BJP neither agrees with nor supports such statements.
और एक बहुत ही अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल आत्मसमर्पण किया गया। चार महिलाओं सहित पांच नक्सलियों ने कल पहले दिन 20 से अधिक नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिलाओं सहित 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सभी लाभ मिलेंगे। इस महीने की शुरुआत में दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनमें से 3 पर नकद इनाम भी था।
Moving on to some international news, Farhat. The second round of nuclear talks between the United States and Iran over Iran's nuclear program has concluded in Rome with signs of cautious optimism. Iran's foreign minister Abbas Araghchi said that there is movement forward and that the two sides have reached an agreement on some principles yesterday. In a social media post, he said relatively positive atmosphere in Rome has enabled progress on principles and objectives of a possible deal. U.S. President, Vice President J.D. Vance will be on a four-day official visit to India beginning tomorrow. External Affairs Ministry in a statement said this will be Mr. Vance's first visit to India. During his stay, he will meet with Prime Minister Narendra Modi on Monday. The Vice President and his delegation will have other engagements in Delhi and are also scheduled to visit Jaipur and Agra. The visit will provide an opportunity for both sides to review the progress in bilateral relations and the implementation of the outcomes of the India-US joint statement issued on the 13th of February this year during the visit of Prime Minister to the US. The two sides will also exchange views on regional and global developments of mutual interest.
जी, और अब रुक कर लेते हैं भारत में, मध्य प्रदेश का। वहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते आज मंदसौर के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये निर्णय गर्मी में पानी की उपलब्धता, अवरोध की सुविधा, सुरक्षित बाड़ों और निगरानी प्रणाली का आकलन करने के बाद लिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इस समय 26 चीते हैं, जबकि इसकी क्षमता 20 से 24 चीतों की है।
Yes, and talking about festivals, Farhat, the festival of Easter is being celebrated across the world today. It signifies the resurrection of Jesus Christ after his crucifixion and death at Calvary on Good Friday. Reports of Easter celebrations have been received from different parts of the country and abroad, and special mass are being held at churches to mark the day. President Draupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar have extended their greetings to all citizens, especially the Christian community residing in India and abroad on the occasion. Moving on to some sports news. In IPL T20 cricket, Lucknow Super Giants defeated Rajasthan Royals by 2 runs in Jaipur last night. In another match, Gujarat Titans defeated Delhi Capitals by 7 wickets in Ahmedabad. And today, Punjab Kings will face Royal Challengers Bengaluru in Chandigarh at 3:30 p.m. And Mumbai Indians will take on Chennai Super Kings in Mumbai at 7:30 p.m.
और अब आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले किन खबरों का रुख करेंगे?
आई विल बिगिन विद द चेन्नई मेट्रो फरहत जी। द सदर्न रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड एन एसी सब अर्बन ट्रेन बिटवीन चेन्नई पीच टू चेंगलपेट। देयर विल बी 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स डेली विद 2 फुल लेंथ ट्रेन सर्विसेज बिटवीन चेन्नई बीच एंड चेंगलपट्टू एंड 1 शॉर्टर सर्विस बिटवीन चेन्नई बीच एंड ताम्बरम। These services will not operate throughout the day. Instead, the AC rake will run in 2 sessions, morning and evening, with a nearly 5-hour break in between for routine maintenance. As maintenance window is essential and only 1 AC rake is currently available, it will be serviced at Tambaram. An additional run train will operate between Chennai Beach and Tambaram at night and early morning, with the up service starting from Chennai Beach at 7:35 p.m. from April 19 and the down trip from Tambaram at 5:45 a.m. from April 21. Unlike regular suburban trains, the new AC service will skip several stops between Chennai Beach and Chengalpattu. However, when the trains run only between Tambaram and Chennai Beach, it will stop at all intermediate stations, and the ticket fares are equal to Chennai Metro fares. Aur ek aur choti si khabar hai hamare paas Chennai se hi. Tamil Nadu State Council for Science and Technology Function has announced a scheme to support the students of PG Arts and Science courses and UG professional courses to inculcate and promote research. The council has done the selection process with a very systematic way through eminent professors, scientists, directors as experts from universities. Central institutions such as IIT, CLRI, NIOT identified 1,014 potential projects, and the same was approved by the government. The selected project will get a maximum grant of 10,000 rupees for its implementation. और अब आपके पास चलते हैं।
जी रेनु, चेन्नई से रुक कर लेते हैं दिल्ली की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक इमारत ढहने से हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं दिल्ली के पर्यावरण और खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में राजधानी में स्थित कूड़े के पहाड़ का निपटारा जल्द ही किया जाएगा। श्री सिरसा ने कहा कि वर्तमान में करीबन 1.25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जा रहा है, जिसमें वृद्धि की जरूरत है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है रेनू। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, और ये गिरोह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सक्रिय है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा सुरेंद्र सिंह जाखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस अभियान में कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
एंड आई एम मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इट इज अबाउट द एनवायरमेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। the Bengaluru Solid Waste Management Limited or BSWML Chief Operations Officer Ramamani announced that a massive cleanliness drive will be held across all wards under the 8 BBMP zones from April 21st to April 30th, 2025. The initiative comes in response to increasing instances of citizens dumping waste in public spaces such as roadsides, footpaths and vacant lots, practices that not only mar the city's aesthetics but also harm the environment. To address this, BSWML has already identified major waste dumping sites across the city and drawn up a plan to clean them simultaneously. The 10-day drive will involve active participation from the public, non-governmental organizations, resident welfare associations, apartment owners associations and volunteer groups. The goal is to clean roads, footpaths, medians and public areas across Bengaluru. So, dekhiye hamari sarkar kitna kuch kar rahi hai for the environment and aur hamare ko usme utna hi uske sath hame
sehbhag karna hoga. Wo Bengaluru hi nahi, mujhe lagta hai har shehar mein jo hai wo zarurat hai cleanliness ki, jo hai ki jo shehar hai wo swachh reh sake. Aur mujhe lagta hai ki bachcho ko bhi jo hai ek moral lessons diya jana chahiye ki jis tarike se aap apne ghar ko swachh rakhte hain aur kahin bhi aap kuch bhi kuda nahi fekhte hain, to usi tarike se shehar bhi aapka jo hai wo ghar hai
utna hi sundar hona chahiye. Exactly. So ek aur news hai Bengaluru se Farhat. The Karnataka High Court has directed the state government to take strict action against clinics run by unqualified individuals, stating that such establishments pose a serious threat to public health. The observation came in response to a petition filed by the proprietor of a clinic in Mandya, who sought the court's direction to facilitate the registration of his clinic under the Karnataka Private Medical Establishments Act. The court expressed concern over the growing number of quacks operating in remote areas, particularly in rural regions. It is noted that such individuals are endangering the lives of innocent people by opening clinics in far-flung areas and hoodwinking them. And so the court has emphasized the need for the state government to identify and take firm action against such illegal medical practices.
Ji, aur Bengaluru se Maharashtra ki taraf badhte hain. Giri premi ke prasiddh parvatarohi Krishna Dhokle ko Maharashtra sarkar ki or se varsh 2022-23 ke liye pratishthit Shiv Chhatrapati Rajya Khel Puraskar se sammanit kiya gaya hai. Bhumi aadharit sahasik khelon ke kshetra mein ye sarvoch rajya stariya manyata puraskar hai. ये पुरस्कार उन्हें कल शाम शिव छत्रपति खेल परिसर बालेवाड़ी पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया गया. ढोकले 23 वर्षों से अधिक समय से पर्वतारोहण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद इन तेलंगाना, 3 स्टूडेंट्स वी अजय रेड्डी, बनी ब्राता माजी एंड हर्ष ए गुप्ता फ्रॉम द स्टेट स्कॉर्ड 100th percentile इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ JEE मेन सेशन 2. A total of 24 candidates have scored 100 NTA score. Topper Bunny Brata Maji has topped in the JEE main January session as well. He has scored 100 percentile again. The candidates who rank within the top 2.5 lakh in JEE main 2025 will be eligible to take JEE advanced 2025 exam. The exam was conducted in computer based test or CBT mode. Or अब आपके पास चलते हैं कोलकाता की न्यूज के लिए.
जी, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं और इस समय वहां पर वक्फ विधेयक को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है. जी, वहां के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वे मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे और मुर्शिदाबाद की वस्तुस्थिति पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे. राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद जिले के अशांत क्षेत्रों का दौरा करने के बाद ये बात कही. उन्होंने कहा कि पीड़ितों पर बर्बर हमलों की जानकारी मिली है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है. राज्यपाल ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा करना केंद्र और राज्य सरकार का दायित्व है. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के बाद से अशांत क्षेत्रों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं रेनू
जी। हाँ जी
जी, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के ही मौसम की कर लेते हैं, तो गर्मी से थोड़ी सी आज निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है।
दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस।
जी हाँ, बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस।
और अगर हम चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की बात करें, इट्स गोइंग टू बी अ क्लाउडी स्काई थ्रू आउट इन ऑल द थ्री मेट्रोज बिगनिंग विद चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 23 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस।
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज है 20 अप्रैल 2025 और इतिहास में दर्ज हुई हैं आज ही के दिन बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका हम जिक्र
आज करेंगे। यस
जी बिल्कुल। तो सबसे पहले रेनू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रेडियम के बारे में आपने पढ़ा था, मतलब बचपन में रेडियम
कुछ कुछ याद है,
कुछ कुछ याद है ना। मुझे लगता है हम लोग रेडियो में जो है वो रेडियम लगा देते थे ताकि जो है रात में है ना वो चमकता जब था तो बड़ा अच्छा लगता था।
yes.
तो बहुत सारी चीजों में जो है वो रेडियम लगाया जाता था। तो आज ही के दिन 1902 में मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम और पोलोनियम को पिच ब्लेड नामक खनिज से अलग किया था और उनकी इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में नई क्रांति लाई थी। उनकी ये खोज कैंसर के इलाज में भी वरदान साबित हुई। अपनी इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1903 के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
एग्जैक्टली। एंड वी मूव अ लिटिल बैक टू द ईयर 1862 जहां पे आपने रेडियम की बात करी है, तो मैं पास्चराइजेशन की बात करूंगी। द फर्स्ट पास्चराइजेशन टेस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय फ्रेंचमैन लुई पास्चर एंड क्लॉड बर्नार्ड इन 1954। ऑन दिस डे पंचशील अग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया टुक प्लेस एंड ऑन द सेम डे 19 member Indian expedition team successfully summited the Mount Everest for the first time, led by Lieutenant Commander M.S. Kohli. Captain Ajit Singh Cheema, along with three members, were the first to have set foot on the mountain peak.
जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए 20 अप्रैल 1960 की, तो आज भारत ने विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। पहला जेट विमान बोइंग 707 एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था।
एग्जैक्टली। एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1989 रघुनंदन स्वरूप और आरएस पाठक द 18th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICJ आल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट इन 1989 एंड ही सर्वड एज अ जज एट द ICJ फ्रॉम 1989 टू 1991। और 2010 की और बात करते हैं। ऑन दिस डे एक्सप्लोजन अकर्ड ऑन द डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको सम 41 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ लुइजियाना लीडिंग टू द लार्जेस्ट ऑयल स्पिल इन हिस्ट्री।
और रेनू 2010 से मैं पीछे जाना चाहूंगी 1971 में, तो भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट आज ही के दिन मैच जीता था। और 1972 की अगर बात की जाए तो अपोलो 16 मिशन 6 घंटे की मशक्कत के बाद चांद पर उतरा। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बन गई थी आज ही के दिन।
जी बिल्कुल। So let's move on to our next segment, Farhat.
जी बिल्कुल। जहाँ पर हम याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को और जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा।
बिल्कुल। So we are going to begin our day remembering Tim Bergling, known as Avicii, who was a Swedish DJ, remixer and record producer. And at the age of 16, he began posting his remixes on electronic music forums, which led to his first record deal. He rose to prominence in 2011 with his single Levels. And his debut studio album, True, blended electronic music with elements of multiple genres and received generally positive reviews. But here we're going to listen to Wake Me Up, his lead single, which topped most music markets in Europe and reached number 4 in the United States. And this song, Farhat, Wake Me Up, was a song that came to change the EDM music forever. So, sunte hain Wake Me Up.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't.
उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला तीन चीजों के लिए मशहूर रहा है रेनू
जी,
पीर की अगर बात की जाए, पेड़े की बात की जाए या फिर कवि की, तो पीर और पेड़ों से अलग अगर कवियों की बात करते हैं तो इस जिले ने इस्मत चुगताई, जिलानी बानू, दिलावर फिगार, अदा जाफरी और शकील बदायूनी जैसे से एक नामी कवि और शायर देश को दिए जी। और आज हम शकील बदायूनी की पुण्यतिथि पर उनके गानों को फिर से गुनगुनाएंगे। अपने गानों से शकील बदायूनी ने खूब लोकप्रियता हासिल की, वो जहां भी जाते तालियों की गूंज हर कोने से सुनाई देने लगती थी।
एंड यू नो शकील मूव टू बॉम्बे इन 1944 टू राइट सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स वेयर नौशाद इमीडिएटली रिटेन्ड हिम। एंड अगर हम से पहले उनकी मूवी की बात करते हैं जिनके लिए उन्होंने गाने लिखने शुरू करे थे, दैट वाज द मूवी दर्द। एंड यू नो द सॉन्ग्स ऑफ दर्द प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल, स्पेशली उमा देवीज और जिनको हम टुनटुन के नाम से भी जानते हैं, हर सॉन्ग अफसाना लिख रही हूँ। हम सारे ही जानते हैं कि ये गाना कितना हिट हुआ था।
जी बिल्कुल, और उनकी फिल्मी सफर में एक नजर डालने से पता चलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फिल्मी संगीतकार जो है वो नौशाद के साथ ही दिए थे। तो इसकी जो गीत आपने बताया कि अफसाना लिख रही हूँ काफी लोकप्रिय रहा, तो आइए सुन लेते हैं।
अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ जब तू नहीं था कुछ भी नहीं है।
1960 में रिलीज फिल्म चौदहवीं का चांद हो का गीत ने काफी लोकप्रियता हासिल की। गीत में वहीदा रहमान की खूबसूरती को मोतियों जैसे शब्दों के साथ यूं पिरोया गया कि गीत मन को प्रेम के एक निश्चित मुकाम के लिए ठहराव दे देता है। तो आइए सुन लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सनगमा।
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो।
And you know what, his lyrics for the song Husn Wale Tera Jawab Nahi and Ravi's music score both won the Filmfare Awards for the hit film Gharana. So why don't we listen to this another beautiful song written by Shakil Badawini, Husn Wale Tera Jawab Nahi.
हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
अपने फिल्मी गीतों की दिलकशी से उर्दू शायरी को लोकप्रिय बनाने वाले शकील मोहब्बत पर कुछ यूं लिखते हैं। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया।
तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा
और अब बात कर लेते हैं पन्ना लाल घोष की। आधुनिक बांसुरी के जन्मदाता माने जाने रहे हैं। उन्होंने बांसुरी जैसे लोक वाद्य को शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया। उन्हीं के प्रयास से बांसुरी के आज के फ्यूजन संगीत में अहम स्थान है। पन्ना लाल घोष ने कई फिल्मों में बांसुरी बजाई जिन्हें आज भी अद्वितीय माना जाता है। मुगले आजम हो या बसंत बहार, बसंत दुहाई, अनजान और आंदोलन जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। तो आइए सुनते हैं मुगले आजम का ये गीत जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और पन्नालाल घोष के बांसुरी वादन ने इस गाने को खूब लोकप्रियता दिलाई।
Yeah.
And today is the birthday of Andrew Clement Serkis, who is an English actor and filmmaker. He is best known for his motion capture roles comprising motion capture acting, animation and voice work for computer-generated characters such as Gollum in the Lord of the Rings film trilogy, which was from the year 2001 to 2003, and The Hobbit, An Unexpected Journey, King Kong, Caesar in the Planet of the Apes, or itni sari movies. But here, Farhat, we are going to listen to this dialogue of Andy Serkis, where he played the role of Gollum from the movie The Lord of the Rings, The Two Towers, where Gollum is arguing with himself.
Must have the precious. They stole it from us. Sneaky little hobbitses. Wicked, tricksy, false. No, master.
Huh?
Yes, precious, false. They will cheat you, hurt you, lie.
Master's my friend.
You don't have any friends. Nobody likes you.
और अब आइए श्रोताओं, याद करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने राजस्थानी लोकगीत को लोकप्रियता दिलाई। हम बात कर रहे हैं कोमल कोठारी की। इन्होंने राजस्थानी लोक कलाओं, लोक संगीत और लोक वाद्यों के संरक्षण, लोक कलाओं की खोज हो या फिर उन्हें लोकगीत हो या फिर कथाओं का संकलन और शोध के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर आजीवन कार्य किया। श्री कोठारी ने सन 1953 में देश के अग्रणी कहानीकारों में गिने जाने वाले श्री विजय दान देथा के साथ मिलकर प्रेरणा नामक पत्रिका शुरू की। पत्रिका का उद्देश्य हर महीने एक नया लोकगीत खोजकर उसे लिपिबद्ध करना था। उन्होंने 40 वर्षों तक एक जुनून की तरह राजस्थान के लोक संगीत को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। श्री कोठारी के अथक प्रयासों से लंगा मंगनियार संगीत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्त हुआ और इन्हें भारत सरकार द्वारा सन 2004 में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Today we are remembering another great personality, Farhat, Gopinath Mohanty, winner of the Gyanpith Award and the first winner of the National Sahitya Akademi Award in 1955 for his novel Amrutara Santana, who was a prolific Odia writer of the mid-20th century. Aur agar hum unke citations aur unke awards ki baat karein, toh he received the Visuva Milan Citation in 1950. He won the first Central Sahitya Akademi Award in 1955. And it was the first Sahitya Akademi Award ever given to a creative literary work in any language or any genre. And the Gyanpith Award was conferred on him in 1973 for his epic Mati Matala or The Fertile Soil.
जी बिल्कुल रेनू, और अगर इनके कार्यों की अगर बात की जाए तो मोहंती ने आदिवासियों को भारतीय मुख्यधारा के हिस्से के तौर पर दर्शाने में पुरजोर कोशिश की। भले ही उनकी रचनाएं उड़ीसा से जुड़ी हों, मगर उनमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य था जिसमें मानवता से जुड़े पहलू हों या फिर शहरी और औद्योगिक सभ्यता के कारण हुए मनुष्य जीवन में हो रही कठिनाइयां, उनको भी काफी उन्होंने उजागर किया। तो उनकी जो हरिजन 1948 में जो नॉवल आई, और ऊंचे सीधे साधे जो काफी लोकप्रिय भी हुई, और इसके अलावा उनका कहना था कि ये इत्तेफाक है कि मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ, मैं कहीं भी पैदा हो सकता था मगर मैं आदिवासी ही बनता जो अब मैं हूं। तो मोहंती ने अपने जीवन काल में 24 उपन्यास, लगभग 300 लघु कथाएं लिखी।
And today is the birthday of Babita Shivdasani Kapoor, or Babita, who is an Indian retired actress who appeared in Hindi language films. And her first debut film was Das Laakh, but it was the romantic thriller Raaz opposite Rajesh Khanna that gained her recognition. So pehle hum is movie Raaz ka hi ye gana sun lete hain before we talk a little more about Babita. So let's listen to Chale Aao. And from 1966 to 1973, she starred in 19 films. But here we're going to listen to another beautiful song from her movie Haseena Maan Jayengi, Bekhudi Mein Sanam.
जी पास तो आ गए हैं लेकिन अब दूर जाने का भी वक्त हो गया है। आधे घंटे कैसे पता चला, मतलब लगा ही नहीं कि हमने आप आधे घंटे पूरे निकाल दिए। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी।
यस प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब संडे।
नमस्कार।